खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदा का कलाम सीखना शुरू करें, आए हम सब खुदा के हुजूर दुआ करें। खासकर दुआ करेंगे कि खुदा बाप इंटरनेट के सारे इस नेटवर्क पर अपना कब्जा कंट्रोल करे, क्योंकि वही यहोवा खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो इस सारे मसले को हल कर सकता है। और खुदा उनसे दुआ करेंगे फिजा में उन तमाम रुकावटों को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदा बाप डांटे, ताकि हम उसके कलाम में से उसके सच्चाई को सीखने वाले बने। तो हम सब मिलकर दुआ करेंगे। आप सब अपने लबों को खोलें और खुदावंद से उसका कलाम और उसकी हिफाजत, और चाहेंगे कि इंटरनेट की सारी जो प्रॉब्लम या मसला है वो खुदावंद दूर करे। आए हम सब दुआ करें। यहोवा खुदा, तू जो कुदरत वाला है, तू जो मौजजात का खुदा है, तू जो अपने लोगों की दुआओं को सुनता है, हम अपने दिल की गहराइयों से तेरे हजूर झुकते हैं और हमारा ईमान है कि तू दुआओं का जवाब देने वाला खुदा है। जो आज का पैगाम, जो आज का वक्त तूने हम सबके लिए ठहरा दिया है कि तेरे हजूर इकट्ठे हों और तेरी आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को सुने। सो खुदा बाप, तेरी पाक मर्जी पूरी हो और हमारा मुखालफ नहीं बल्कि तू इज्जत और जलाल पाए, तेरे नाम की तारीफ हो। आए हुए तमाम बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, बिजली पर, इस जगह पर, सारी फिजा पर तेरे रूह कुद्दस का पहरा और तेरे रूह कुद्दस की बाढ़ चाहते हैं। सब कुछ बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में बड़े ईमान के साथ ये दुआ मांगते हैं, आमीन। तो मेरे साथ निकाले नए अहदनामा में से इफ़िसियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका पहला बाप, हम 15वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक इस हवाला को पढ़ेंगे। और आप जैसे सब जानते हैं कि हम आयत बा आयत इस खत में से सीख रहे हैं, और इस खत में पालूस रसूल ईमानदारों को सिखाना चाहता है कि वो कौन हैं, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त, यीशु मसीह में उनको क्या कुछ हासिल है। तो इसलिए 15वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। जो बहन भाई कलामे खुदा को पढ़ सकते हैं वो मेरे साथ निकालें। बच्चों से, बुजुर्गों से जो नहीं पढ़ सकते उनसे गुजारिश है कि गौर से सुने। 15वीं आयत में पालूस कहता है, इसी सबब से मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यसु पर है और सब मकसों पर जाहर है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता और अपनी दुआओं में तुम्हें याद किया करता हूं, कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे और तुम्हारे दिल की आंखें रोशन हो जाएं, ताकि तुमको मालूम हो कि उसके बुलाने से कैसी कुछ उम्मीद है और उसकी मेराज के जलाल की दौलत मकसों में कैसी कुछ है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े जाने से हम सबको बड़ी बरकत मिले। यहाँ पर खुदावंद का बंदा पालूस रसूल सिखाना चाहता है, मिसाल के तौर पर, इस मिसाल से, इस हकीकत से शुरू करना चाहता हूँ। किसी भी मुल्क की फौज, जब उस मुल्क की फौज का कोई भी फौजी इससे पहले कि वो जंग लड़ने के लिए जाए, उस फौजी को तैयारी करने से पहले पता होता है कि कौन सी सहूलियात उसके पास मौजूद हैं, कौन सा इख्तियार उसे हासिल है, उसका कौन सा ओहदा या दर्जा, या वो कहाँ पर काम करेगा, कौन सा हथियार चलाएगा। पहली बात वो ये जानता है, दूसरी बात वो क्या करता है, मैदान में जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जिसके मतहत, जिनके अंदर, जिनके नीचे वो काम कर रहा है, वो उसे सब कुछ मुहैया करेंगे। और उसका काम क्या होता है, जंग लड़ना, अपने मुल्क की हिफाजत करना, अपने मुल्क की सरहदों की क्या करना, निगाबानी करना। वैसे ही हम यहाँ पर देखते हैं पालूस रसूल ईमानदारों को चाहता है कि वो जाने कि यीशु मसीह में उनके लिए क्या कुछ मौजूद है, कौन सा इंतज़ाम है, वो आसमानी खजाना जो उनके लिए खुला हुआ है, इससे पहले कि वो जंग लड़ने के लिए जाएं। हमारी जंग जो मसीही ईमानदार हैं, ये रूहानी जंग है। हमारी जंग इंसानों के साथ नहीं, हमारी जंग खून और गोश्त के, जैसे कि दुनिया लड़ती है, फौजें लड़ती है, वैसी जंग नहीं। हमारी जंग पोशीदा है, यानी कि ये जाहरी जंग नहीं, पोशीदा जंग है जो अनदेखी है। ये हमारी जंग अबलीस उसके उन तमाम चेलों, यानी कि वो गिराए हुए जो फरिश्ते हैं जिन्होंने खुदा का इनकार किया, उनके साथ है। तो इसीलिए पालूस रसूल कहता है, मैं इसी सबब से तुम्हारे ईमान का हाल सुनकर जो जाहिर है, तुम्हारी बाबत खुदा के हजूर शुक्रगुजारी करने और दुआओं करने से बाज नहीं आता। आप जो यहाँ पर बच्चे, छोटे, बड़े, बुजुर्ग बैठे हैं, जितने यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो सब यीशु मसीह के क्या हैं, खानदान का हिस्सा है, यीशु मसीह में सिपाही हैं। एंड पालूस रसूल कहता है कि हमें यीशु मसीह में क्या कुछ हासिल है, और यहाँ पर 15वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक ये पालूस रसूल की दुआ है, ये पालूस रसूल की दिल की ख्वाहिश है, ये पालूस रसूल के क्या है, मनोजात है, दरख्वास्त है। कि पहली 14 आयात में जो आप सीख चुके हैं आयत बा आयत के, हमें क्या कुछ हासिल है, हमारे लिए आसमान पर हर तरह की रूहानी नेमत मुहैया है, जमीन पर हमें खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा, जो कि अजीम कुदरत और बहुत बड़ी बरकत है, हमें तमाम गुनाहों की माफी हासिल है, हम यीशु मसीह में उसके अजीज क्या कहते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये वो तमाम रूहानी नेमतें हैं, तमाम रूहानी बरकात हैं जो पालूस चाहता है कि हम सब जानें। और फिर वो दुआ करता है 15वीं आयत से लेकर बाप के अखीर तक 23वीं आयत तक कि हम सब जानें। सो आज हम 17वीं आयत पर गौर करेंगे, और ये पालूस की दुआ का हिस्सा है। और पालूस कहता है कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा, जो जलाल का बाप है, तुम्हें अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे। ये पालूस रसूल की दुआ है, ये दिल की उसकी गुजारिश है खुदा के हजूर हर एक ईमानदार के लिए, कि वो जाने के उनका इस जमीन पर मकसद क्या है, कि वो जाने के कौन सी बरकत हासिल है। आज बहुत दफा हमें कलीसियाओं में, गिरजाघरों में पैगाम सुनने के लिए मिलता है, और वो पैगाम क्या होता है कि आप गुनाहगार हैं, आप खुदा के सामने पेश नहीं हो सकते, आपको ये मसला है, वो मसला है। बहुत दफा हमारी दुआएं सिर्फ ये होती हैं कि खुदा मेरे लिए ये कर, खुदा मुझे नौकरी दे दे, खुदा मुझे औलाद दे दे, खुदा मुझे पैसा दे दे, खुदा मुझे हीरो बना दे, खुदा मुझे दौलत दे दे, मुझे ये हुनर सिखा दे। लेकिन बहुत कम दफा खुदा के लोग, बहुत कम दफा ये सुनने के लिए मिलता है कि हमें पहले से ही क्या कुछ हासिल है, हम कितने अजीम लोग हैं। इसलिए आज मेरी यही दुआ है कि आप इस पैगाम के वसीला से जानें कि हम कौन हैं, हमारा दर्जा, हमारा मकाम, हमारी हालत मसीह में क्या है। जैसे हमने गाया कि यीशु मसीह ही वो वाहद शख्सियत है, यीशु मसीह ही वो वाहद खुदा का बेटा है जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, और कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ऐसा किया हो। कोई ऐसा खुदा नहीं जमीन पर जो इंसान बना हो और फिर बनी इंसान के गुनाहों के कफारे के लिए मरा हो। वाहद यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जिस पर आप ईमान रखते हैं, जो आपसे मोहब्बत करता है और जो चाहता है कि आप उसकी मेराज में शरीक हों, उन तमाम बरकात में शरीक हों। तो पालूस रसूल क्या कहता है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह का खुदा। यहाँ पर पालूस रसूल हमारे खुदावंद यीशु मसीह का लफ्ज़ हमारा इस्तेमाल इसलिए करता है कि हमारा उसके साथ रिश्ता है, तल्लक है, वास्ता है, हम एक खानदान की सूरत हैं। और कहता है जो जलाल का बाप है, आप हर रोज अपने घर में, गिरजा घर में जब दुआए रबानी पढ़ते हैं जो खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाई, उस दुआ में हम क्या पढ़ते हैं? बादशाही जलाल अब्दुल अबाद तेरा है, आमीन। खुदा जलाल का बाप है, जलाल से मुराद यानी कि वही तारीफ के लायक है। वाहद वही है जिसकी हम प्रस्तुति और सना कर सकते हैं। वाहद वही है जिसको अजमत देने की जरूरत है, ना कि हमें अपने आप को, ना कि दुनिया की चीजों को, ना कि दुनिया के मशहूर अदाकारों को। अगर इज्जत देने की जरूरत है तो वाहद हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा की, जो हमारा बाप है। कैसी अजीब, कैसी खुशी भरी बात है कि खुदा हमारा बाप कहलाता है। वाहद खुदा, बाइबल का खुदा। कोई भी ऐसा और मबूद नहीं जो चाहता है कि उसके पुजारी, उसके मानने वाले, उसकी हम्द और सना करने वाले उसके साथ कोई करीबी रिश्ता रखें। आपको याद होगा मैंने आपको कहानी बताई थी पुराने हनामा में बाल के पुजारियों के बारे में, जिस मबूद की, जिस देवता की, जिस वो बुत की परस्तिश कर रहे थे, वो बुत उनसे क्या चाहता था? कुर्बानी। उनसे चाहता था कि वो अपने आप को काटें, पीटें, सब कुछ करें, लेकिन उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन जिस खुदा की हम, जो जलाल का बाप है, जिसका हम तराना गाते हैं, जिसके बारे हम गीत गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह है और जलाल का बादशाह है। वो जलाल का बादशाह बोलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, चलता है, हमारे दुखों में शरीक होता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। कितनी अजीम बात है। और जबूर नवीस कहता है कि मुबारक हैं वो कौमें जिनका खुदावंद खुदा जिंदा है, और कहता है तीसरी बात, जलाल का बाप है तुम्हें अपनी पहचान में। पालूस रसूल यहां पर चाहता है कि वो खुदा चाहता है, पालूस रसूल की दुआ है कि तुम उस से वाकिफ हो, तुम्हें पहचान हासिल हो, वाकफियत हासिल हो, तुम्हें मालूम हो कि तुम क्या कुछ रखते हो। आज हम सीखेंगे कि हमें उन तमाम बरकतों के साथ, उन तमाम नेमतों के साथ, उन तमाम खुदावन की अल्लाही कुवतों के साथ साथ जो हक हासिल है वो कितना अजीम है। इस हक को, इस मकाम को, इस दर्जा को हम कमा नहीं सकते, लेकिन ये खुदा के फजल की नेमत है। ये खुदा के फजल की क्या है? बरकत है। और पालूस चाहता है कि हम उसके बारे में इलम रखें, वो चाहता है कि हम उसके बारे में पहचान रखें, वो चाहता है कि हम उससे जाने, उससे वाकिफ हों, उसके बारे में मालूमात हो। और कहता है अपनी पहचान में हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे। यहाँ पर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस मौजूद है जो आपके अंदर रहते हैं। अबलीस, शैतान जिसे लूसीफर कहा गया है, उसके दिल की ये ख्वाहिश है कि वो खुदा जैसा बने, और यही उसके दिल की ख्वाहिश है कि वो खुदा बनना चाहता है। और खुदा बाप ने और यीशु मसीह ने उसे वक्ती तौर पर इस दुनिया का खुदा बनने दिया है, लेकिन उसमें खुदा जैसी कोई खासियत नहीं पाई जाती। लेकिन आप बहुत ही मुबारक हैं कि वो खुदा, जिंदा खुदा जिसने आसमान और जमीन को बनाया, आपके अंदर रहता है, आप उसकी सुकूनतगाह हैं। पालूस चाहता है कि ये बातें हम जानें, पालूस चाहता है कि इस सच से हम वाकिफ हों, और कहता है हिकमत और मकाशफा की रूह बख्शे, यानी कि तुम्हें अकलमंदी हासिल हो, तुम्हें दानिश, तुम्हें दनाई हासिल हो, तुम इस बात की समझ रखो, उस अलाही कलाम को समझो, उन भेदों को जानो, जो भेद जो राज बयान से बाहर है, जो पहले ना किसी इंसान ने सुने ना किसी की समझ में आए, लेकिन अब वो वक्त है कि तुम रूहुल कुद्दस के वसीला से उन बातों को जानो। ये पालूस रसूल की दुआ है, ये पालूस रसूल की ख्वाहिश है, ये पालूस रसूल की मनाजात है, अर्ज है, दरख्वास्त है, उसके उसके दिल में से उठने वाली, क्या कहते हैं, सदा है, पुकार है, कि हम जो ईमानदार हैं अपनी हालत को, अपनी शिनाख्त को, अपनी असलियत को, अपने मुकाम और दर्जा को पहचाने के हम कौन हैं खुदावंद यीशु मसीह में। आप तनहा छोड़े हुए लोग नहीं, आप दुनिया के सताए तो हुए हैं, लेकिन आप अकेले नहीं। बेशक आप दुख उठाते हैं, लेकिन आपको इत्मीनान देने वाला बहुत बड़ा है। बेशक आप थोड़े हैं, लेकिन वो खुदा पूरी दुनिया का मालिक है, और आप उसकी हजूरी में जो थोड़े हैं, जब वक्त आएगा तो नूर की मानद, सितारों की मानद चमकोगे। और ये बात पालूस चाहता है कि हम अपनी हालत को जाने, अपने मुकाम को जाने। सो आज मैं चाहता हूं कि हम सीखें कि हमें खुदावंद यीशु मसीह में क्या कुछ हासिल है, वो पहचान, वो हिकमत, वो दनाई और वो मकाशफा की रूह। आज मैं चाहता हूं कि हम जाने के बाइबल मुकद्दस में उन तमाम बरकात के साथ साथ, पालूस कहता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। आपको पता है कि शाही काहिनों का फिरका किसे कहा जाता है? मिसाल के तौर पर जो कुश्ती लड़ता है उसे क्या कहते हैं? पहलवान। ऐसे कहते हैं जो फौजी होता है, जंग लड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जंगजू। ऐसा ही कहते हैं जो मकान बनाता है, उसे क्या कहते हैं? मिस्त्री। ऐसा ही कहते हैं जो जमीन पर हल चलाता है, उसे क्या कहते हैं? किसान। ऐसा ही कहते हैं जो गोश्त को काटता है, उसे क्या कहते हैं? कसाई। वैसे ही पालूस रसूल यहां पर हमें सिखाना चाहता है कि तुम शाही काहिनों का फिरका हो। मेरे साथ इस हवाला को देखें, बेशक पहले आपने ये बात नहीं सीखी होगी, नहीं सुनी होगी, क्योंकि बहुत दफा खुदा के लोग इस बात को नहीं बयान करना चाहते, क्योंकि अगर ईमानदार अपनी हालत को जान जाएंगे तो फिर उनसे दुआ कराने के लिए कौन आएगा। इसलिए आज की बातें कड़वी भी होगी, नसीहत परीजा भी होगी, हौसला अफजाई की भी होगी, लेकिन ये खुदा का कलाम है, क्योंकि खुदा ने अपना कलाम हमें इसीलिए दिया है कि हमारी तरबियत और नसीहत हो, हमारी हौसला अफजाई हो, ताकि हम कामल हों। पहला पत्रस दो बा मेरे साथ निकालें, उसकी 5 आयत। आज मेरी कोशिश है कि पालूस रसूल की जो दुआ है कि अपनी हालत, अपना मकाम, अपनी शिनाखत, अपनी पहचान को जाने के हम हैं कौन। हम लावारिस नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह में खुदा के वसीला से मसीह के वारिस हैं, खुदा के वारिस हैं, खुदा में उन तमाम बरकत बरकात के वारिस हैं। तो पहला पत्रस दो बाप उसकी 5 आयत। यहां पर खुदावंद का बंदा पतरस रसूल कहता है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाओ, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका बनकर ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। आप सोचते होंगे कि इस आयत में पतरस रसूल का क्या कहने का मतलब है। वो कहता है, तुम भी जिंदा पत्थरों की तरह रूहानी घर बनते जाओ। यहाँ पर वो कह रहा है कि तुम खुदा का मकदस हो, इसलिए रोज ब रोज तामीर होते जाओ, रोज ब रोज खुदावन में तरक्की करते जाओ। और फिर कहता है, ताकि काहिनों का मुकद्दस फिरका। मैंने क्यों आपको ये बात याद दिलाई कि जो पहलवानी करता है उसे पहलवान पहलवान कहते हैं, जो काश्तकारी का काम करता है उसे किसान कहते हैं, जो गोश्त को काटता है उसे कसाई कहते हैं। वैसे ही यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह है, यीशु मसीह जो सरदार काहिन है, उसके सारे मानने वाले क्या हैं? शाही काहिनों का फिरका है। सो हम क्या हुए सब? काहिन। क्या हुए? काहिन। काहिन का मतलब ये कि वो शख्स जो खुदा के और इंसान के दरमियान खड़ा होकर खुदा से पैगाम को सुन के दूसरों तक पहुंचाता है। काहिन का काम क्या था पुराने अहदनामे में? कुर्बानियों को लेना, बर्रे की कुर्बानी को लेना और खुदा के हजूर पेश करना, और फिर उस पैगाम को वापस लेकर आना और लोगों को बताना कि तुम्हारी कुर्बानी खुदा के हजूर कबूल हो गई। काहिन का मतलब यानी के पुजारी, यानी के इबादत करने वाला, यानी के खुदा से बातचीत करने वाला। सो ये हक, ये दर्जा, ये नाम आप सबको हासिल है। बादशाह के बेटे को क्या कहते हैं? शहजादा। तो यीशु मसीह सरदार काहिन है, तो हमें क्या कहा गया है? शाही काहिनों का फिरका। 9वीं आयत को देखें, यहां पर आप सबकी हालत है, ये आपका मकाम है, ये दर्जा। खुदा ये नहीं कहता कि तुम बेकार हो, खुदा ये नहीं कहता कि तुम इस काबिल नहीं कि बाइबल नहीं पढ़ सकते। खुदा हमारे दिल पर नजर करते हुए उस हकीकत को बयान करता है कि हम कौन हैं। बेशक दुनिया हमें कहती है कि ठुकराए हुए, दुनिया हमें कहती है बेवकूफ, दुनिया हमें कहती है कि यीशु मसीह के शदाई, दुनिया कहती है कि नकम्मे, बेकार, बेवजूद, ठुकराए हुए। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा हमें क्या कहता है? 9वीं आयत, लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, यानी के पाक किए हुए बुजुर्ग, उम्दा लोगों की नस्ल हो, शाही काहिनों का फिरका। यानी के जैसे बादशाह के घर में शहजादा उसका बेटा होता है, उस तमाम चीजों का वारिस, वैसे ही यीशु मसीह जो शाही यानी के शहजादों का शहजादा है, बादशाहों का बादशाह है, उसमें हम सब क्या हैं? उसकी उम्मत है, उसका फिरका है, उसकी जमात के लोग, मुकद्दस कौम, ऐसी उम्मत जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। पहले हम कुछ भी नहीं थे, लेकिन अब बहुत कुछ है। पालूस रसूल चाहता है कि हम इस बात पर यकीन करें, और इसलिए आप सब की जिम्मेदारी है, ना कि सिर्फ मैं पादरी हूँ, मेरी ही जिम्मेदारी है कि आपके लिए दुआ करूँ, आपकी जिम्मेदारी है मेरे लिए दुआ करने की, आपकी जिम्मेदारी है कलीसिया के लिए दुआ करने की, क्योंकि यही काहिन का काम है। इसीलिए पालूस कहता है, ऐसी रूहानी कुर्बानियां चढ़ाओ जो यीशु मसीह के वसीला से खुदा के नजदीक मकबूल होती हैं। मेरे साथ अब्रानियों 13 बाब देखें, उसकी 15 आयत, 13 बाप उसकी 15 आयत में अब्रानियों का लिखने वाला कहता है, पस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानियां, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदावन के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। हमें प्रस्तुति की माला, प्रस्तुति के गीत खुदा के हजूर गुजारने की जरूरत है, शुक्रगुजारी के नगमे उसके हजूर गाने की जरूरत है, खुदावन में जो उसने मौजजात किए हैं एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करने की जरूरत है। जब कलीसिया में कोई शफा पाए, खुदावन तेरा शुक्र हो। जब कलीसिया में कोई बीमार हो तो खुदावन के हजूर जाने की जरूरत है, क्योंकि आपको खुदा के तख्त पर रसाई हासिल है, आप खुदा के हजूर रूहानी तौर पर बैठे हुए हैं। इसलिए हमारी जंग रूहानी है, इसलिए हमारा रिश्ता जो रूहानी है जिस्मानी नहीं, इसमें हम खुदा को देख नहीं सकते क्योंकि हम ईमान से चलते हैं ना कि आंखों देखे पर। हमारा रिश्ता खुदा के साथ क्या है? रूहानी पोशीदा रिश्ता है। हम उस अनदेखे खुदा की परस्तुश करते हैं जो हर एक मिनट में, हर एक दिन में, हर एक लम्हा में अपने जिंदा होने का सबूत देता है। अगर आज आप यहाँ पर मौजूद हैं तो उस खुदा के बायस, अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो उस खुदा के बायस नेटवर्क में कोई मसला नहीं, ये उसकी मौजूदगी, उसकी कुदरत का इजहार है। इसलिए आपको हक हासिल है, आप खुदा के हजूर पेश हो सकते हैं, खुदा से बातचीत कर सकते हैं जब चाहें, जहां चाहें खुदा से बात कर सकते हैं, क्योंकि खुदा आपके अंदर रहता है। खुदा ऊपर नीचे आपके दरमियान इर्द गिर्द वो हर जगह पर मौजूद है, क्योंकि वो खुदा है। अबलीस एक वक्त में एक ही जगह हो सकता है, फरिश्ता एक जगह एक वक्त में एक ही जगह हो सकता है, लेकिन खुदा जो क्या कहते हैं कि हर जगह मौजूद है, उसकी ज़ात की सिफ़, उसकी ज़ात में ये खूबी पाई जाती है कि वो हर जगह हाजिर और नाजर है। जब आप ना उम्मीद हैं, वो आपकी उम्मीद ना उम्मीदी में आपकी उम्मीद बन जाता है। जब आप तारीक राहों में होते हैं तो उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग बन जाता है। जब हम कैद में होते हैं तो उसका कलाम हमारी जुए, हमारे बंधन, हमारी जंजीरों को तोड़ता है। जब हम रूहानी तौर पर नाबीना होते हैं, देख नहीं सकते, वो हमें क्या करता है? हमारे दिलों की आंखों को, समझो, समझ को रोशन करता है। आप इससे ऐसे अजीम खुदा की इबादत करते हैं, इसलिए कभी भी अबलीस के झूठों को, अपने इर्द गिर्द के लोगों के बायस जो आपको कहते हैं आप नकम्मे हैं, आप पाक नहीं हैं, आप गुनाहगार हैं, ये है वो है, कभी भी इन बातों को अपनी ज़िंदगी में रुकावट बनने ना दें और उस झूठ को अपने ऊपर गालब ना आने दें, ताकि आप सच्चाई से महरूम ना हो जाएं। सच्चाई ये है कि आप मसीह यसू में उस बादशाहों के बादशाह के बेटे और बेटियां हैं, और आपको खुदा तक पहुंचने की कुदरत हासिल है। क्यों? अब्रानियों 4 बाब देखें, अभी सिर्फ 28 मिनट हुए हैं, हमारे पास 3-4 मिनट बाकी हैं इस पैगाम को खत्म करने के लिए। इसलिए जब भी हम खुदा के हजूर दुआ के लिए आए, शर्माने की, झिझकने की, खौफ खाने की जरूरत नहीं कि खुदा खुदा हमको कुछ कर देगा। हमें खुदा का खौफ करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हमें खुदा का एहतराम करने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि वही इज्जत, सताइश, परस्तिश, बड़ियाई के लायक है, कोई और उस जैसा नहीं है। तो अब्रानियों 4 बाप उसकी 16 आयत में, यहाँ पर भी अब्रानियों के खत का लिखने वाला चाहता है कि उसके पढ़ने वाले इस बात पर यकीन करें, और आज मेरी भी ये दुआ है कि आप भी इस बात पर यकीन करें कि आप रूहानी तौर पर काहिन हैं। काहिन का मतलब जिसे पादरी भी कहा जाता है, काहिन का मतलब खुदा के हजूर इबादत करने वाला, प्रस्तुत करने वाला, उसकी उसकी हम्द और सताइश करने वाला, खुदा के सामने जाने वाला, खुदा के सामने जाकर उससे दुआ करने वाला। सिर्फ मैं ही काहिन नहीं या और कोई काहिन नहीं, आप सबको ये हक हासिल है। बेशक ये बातें अजीब हैं, लेकिन ये सच है, क्योंकि मेरी कोशिश यही है कि बाइबल मुकद्दस आप तक पहुंचाई जाए, ना कि मेरी अपनी बेवकूफाना सोच, ना कि मेरे अपने अल्फाज। इसलिए अब्रानियों 4 बाप उसकी 16 में क्या कहता है खुदावंद का बंदा, बस आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें। खुदा के तख्त के सामने कौन जाता था? काहिन। आपको एलिया जिक्रिया की कहानी तो याद होगी, जिक्रिया और अलिशबा की। जब उसके नाम का कुरा निकला, उसके नाम की पर्ची निकली, तो उसका वक्त आया और वो खुदा के तख्त के सामने गया, खुदा की हैकल में खड़ा हुआ। आज हम रूहानी तौर पर, हमें जरूरत नहीं कि हम जेरूशलम में जाके ही खुदा की हैकल में इकट्ठे हों। खुदा, जैसे मैंने कहा, हर जगह मौजूद है। सो आओ, पास आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें, डर और खौफ के साथ नहीं, जैसे पुराने अहदनामे में काहिन को होता था कि अगर उसकी जिंदगी में गुनाह या गलती है तो वो मारा जाएगा, वो खुदा के जलाल उसकी हजूरी में गुनाह के बायस कत्ल हो जाएगा। बेशक हम गुनाह करते हैं, लेकिन जब हम गुनाह करें, अपने गुनाह का इकरार करें, खुदा से कहें, खुदा खुदा जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप इकरार करें, खुदा मैंने झूठ बोला, खुदावंद मैंने पड़ोसी के घर में से ये चीज चुराई, खुदावंद मैंने किसी के बारे में बुरे ख्याल सोचे, खुदावंद मैंने अपने भाई को बुरा भला कहा, अपने माँ बाप की नाफरमानी की, सो मुझे माफ कर। वो आपको माफ करेगा, और जब आप उसके हुजूर जाएंगे, वो आपको कत्ल नहीं करेगा, उसकी हुजूरी में आप मर नहीं जाएंगे। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है, पास आओ हम फजल के तख्त के पास दलेरी से चलें, ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद कर सकता है। खुदा का तर्स, खुदा की शफकत, खुदा का रहम हर वक्त मौजूद है, और ये किस लिए है? उस फजल के बायस। ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा का तोहफा, खुदा की करम नवाजी है जो हमारी जरूरतों में हमारी मदद करता है। इसलिए आज से ना कि सिर्फ ये कहें कि मुझे किसी से दुआ करवाने की जरूरत है, जब भी दुआ करें, ये नहीं कि भाई दुआ कर रहे हैं तो बस मैं खामोशी से बैठा हूं या बैठी हूं, नहीं, हमें मिलकर एक आवाज होकर अपने लबों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि खुदा अपने मांगने वालों को देता है। उसने कहा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे। उसने कहा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्या वैसा लिखा है कि पादरी फैसल, तू मांगेगा तो तुझे दिया जाएगा और किसी को नहीं, अगर तू ही दुआ करेगा तो जवाब मिलेगा और किसी को नहीं? नहीं, क्या लिखा है? मांगो तो तुमको, ढूंढो तो तुमको, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो खोला जाएगा। तुम का लफ्ज एक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जमा के लिए हुआ, यानी कि तमाम लोगों के लिए। इसलिए मेरी दुआ है, मेरी दरख्वास्त है, मेरी मिन्नत है कि खुदा को पुकारना शुरू कीजिए, खुदा से बातचीत करना शुरू कीजिए, और यही काहिन का काम है, यही काहिन का काम है। तो हमारे लिए दुआ करें, मेरे लिए, मेरी बीवी कैरी के लिए। हम अगले माह के गालबन दूसरे हफ्ते वापस पाकिस्तान में, मैं फिलहाल आऊँगा, कैरी बाद में आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि, मैं आज भाई ताहर से बात कर रहा था कि किताब के वसीला से उसमें तस्वीर होगी, उसमें सब छोटे बड़े बच्चे सब उन तस्वीरों में रंग भरेंगे और उसके साथ फिर कलामे खुदा में से आयतों को सीखेंगे। बेशक हम उम्र में बड़े हैं, लेकिन खुदा के हजूर हम सब उसके बच्चे हैं, और यीशु मसीह बार बार इस बात को कहता है कि खुदा चाहता है कि हम बच्चे की मानद बनकर उसके कलाम को सीखें। इसलिए अपने आप को तैयार करें, इसलिए शर्माने की जरूरत नहीं होगी जब मैं आपको तस्वीर दूं और उस तस्वीर के नीचे आयत हो, तो आप कहें तो ये तो बच्चों के लिए है। आप सब मसीह में बच्चे हैं, हम सब मसीह में खुदा के बच्चे, बेटियां और बेटे हैं, और ये इसलिए हम करेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। जो कुछ आप तस्वीर में रंग की सूरत में भरेंगे, वो तस्वीर उसके साथ कलाम की आयत आपके दिल में बैठ जाएगी। आप कहीं भी होंगे, आपके पास अगर बाइबल ना मौजूद होगी, बस में होंगे, सफर में होंगे, अंधेरे में होंगे, कहीं भी होंगे, तो आप कह सकेंगे, हाँ, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बुला से नहीं डरूंगा, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। तो यही पालूस रसूल की दुआ है कि हम उस जलाल के बाप की हमद करें और उसकी पहचान हासिल करें, मुकाशवा की हिकमत की जिसने रूह हमें बख्शी है, आए हम दुआ करें। आगे चलकर हम 18वीं आयत में देखेंगे और बरकात को। तो मेरी दुआ है कि आप अपनी हालत को, अपनी हैसियत को, अपने मकाम को, अपने दर्जा को पहचानें कि आप कौन हैं। आप आम लोग नहीं, आप रूहानी लोग हो। आप पहले कोई उम्मत नहीं थे, लेकिन अब खुदा की उम्मत हो, यीशु मसीह के वसीला से। तो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, तेरे इस खानदान के लिए तेरा शुक्र हो, सारी रूहानी नेमतों बरकतों के लिए तेरा शुक्र हो, हमें हिकमत, दनाई और मकाशफा की रूह बख्श, ताकि जो कुछ हमें हासिल है उसे हम अपनी जिंदगी में अपनाने वाले बने। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।